संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक सौ एकवीं गाथा की टीका चलेगी, थोड़ी सी अपन ने पढ़ी थी, कितना पढ़ा था, तीन चार लाइन है। प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदायी समुदाय स्वरूप होता है। ये हुआ था जिस प्रकार समुदायी वृक्ष स्कंद मूल शाखाओं के का समुदाय स्वरूप होने से स्कंद मूल और शाखाओं से आलंबित दिखाई देता है, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों के समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा अवलंबित भाषित होता है। यहां तक हो गया था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्कंद मूल और शाखाएं वृक्षाश्रित ही हैं, उसी प्रकार पर्याय द्रव्याश्रित ही हैं, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं। अंतिम पद कि द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं, ये सिद्ध करना है इन्हें। यद्यपि पर्याय और गुण भी शामिल है, गुण पर्याय समझ लो, ये उत्पाद वे ध्रुव के आश्रित हैं, माने पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और बीच में एक स्थिति। ध्रुव तीनों चीजें हैं और ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, एक ही द्रव्य के आश्रित हैं, इसलिए ये तीनों द्रव्य ही हैं। देखा, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं, पदार्थ माने वही द्रव्य, दूसरा द्रव्य रूप नहीं है, माने एक द्रव्य के भीतर जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, जो है वो ही पूरा परिपूर्ण द्रव्य है। पर्याय उत्पाद वे ध्रुव द्वारा अवलंबित हैं, कोई पर्याय होगी तो उसका उत्पाद होगा कि व्यय होगा कि ध्रुव, क्या तीनों ही होंगे। थोड़ा सा समय से समझने की बात है कि वर्तमान में पूर्व पर्याय का व्यय है और उत्तर पर्याय का उत्पाद है। पूर्व माने पहले की नहीं, कहते पहले की नहीं तो क्या होगा, ये दो है ना, तो उसमें एक पूर्व एक उत्तर, उत्तर के विरुद्ध पूर्व है, पश्चिम के विरुद्ध पूर्व नहीं है, समझे ना, पहले और बाद की नहीं है, क्योंकि बाद की कहेंगे तो बीच की पर्याय को छोड़ देना पड़ेगा। ये जो वर्तमान पर्याय है उससे पहले की और उससे बाद की, तो ऐसा नहीं लेना, दो ही पर्याय हैं, वर्तमान और भूत, ये अंतिम समय की एक समय की पर्याय, तो वो पूर्व पर्याय और जो वर्तमान पर्याय है वो उत्तर पर्याय, माने बीच में कोई गैप नहीं लेना। तो अपने कहते उत्पाद व्यय दोनों एक साथ हैं, इसका अर्थ यही है कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा उसे व्यय कहते हैं और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा उसे उत्पाद कहते हैं। ये व्यय नाम का धर्म और उत्पाद नाम का धर्म वस्तु में ही है। जो प्रवचन सार में 47 नयों का वर्णन है, उसमें जो 47 नयों के विषयभूत धर्म है, उनका ऐसा है कि एक धर्म है तो उस धर्म की वजह से वो पदार्थ उस रूप है। तो ये व्यय नाम का धर्म है, समझ लो आप, वो वर्तमान में ही है, वर्तमान में पूर्व पर्याय का एक पर्याय का कह सकते हो, पूर्व की अनंत पर्यायों का भी कह सकते हैं। व्यय होना ऐसी योग्यता इस वर्तमान पर्याय में है, माने उसके अभाव रूप, और वर्तमान पर्याय का उत्पाद माने होना ऐसी रूप योग्यता है, ये बात यहां कहना चाहते हैं। माने वो तो ऐसे उत्पाद और व्यय और द्रव्य वे तीनों एक द्रव्य में एक साथ घटेंगे और वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का इसका कोई संबंध नहीं है, उनमें हम घटित नहीं कर सकते हैं। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा अवलंबित हैं। कोई भी पर्याय होगी तो उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य, अभी एक पर्याय पर लगाना है हमें, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक पर्याय पर लगे। अभी अपने द्रव्य पर लगाए ना कि वर्तमान में द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय रूप है और वर्तमान पर्याय का उत्पाद रूप है। अब ऐसा लगाएंगे तो हमें कहें ये हमारी जो एक पर्याय है जो ये पहले थी उसके अभाव रूप है, अपनी ही पर्याय है और वर्तमान तो है ही, और जो ध्रुव बना है ना, ध्रुव बना क्या है, जो अनंत पर्यायों को आपस में जोड़ता है। हमारी वो वर्तमान पर्याय भी पूर्व की पर्याय से अखंड रूप से जुड़ी हुई है, ख्याल में ना। अर्थात उत्पाद व द्रव्य पर्यायाश्रित हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य बीज अंकुर और वृक्षत्व की भांति अंशों के धर्म हैं। देखो बीज अंकुर और वृक्षत्व, बीज है और फिर वो अंकुर पैदा हो गया उसमें, और वृक्षत्व जो है वो बीज में भी है और अंकुर में भी है। अब ये अपन थोड़ी ऐसा समझते हैं, अपन को वृक्ष जो सामने दिखता है ना वो खड़ा और वो वृक्ष लगता है, हैं? अब जो जमीन में दबा हुआ पड़ा है बीज जो अगले समय में अंकुर के रूप में उत्पन्न होगा तो वो भी वृक्ष ही है, वृक्ष का अंश है तो वृक्ष है, ऐसा यहां बता रहे हैं। बीज अंकुर और बीज और अंकुर दोनों में रहने वाला वृक्षत्व उसकी भांति वे अंशों के धर्म हैं। मतलब उत्पाद होगा तो उस अंश का होगा, व्यय होगा तो उस अंश का होगा, ध्रुवता आएगी तो उस अंश की पकड़ना, माने द्रव्य की नहीं पकड़ना, क्या बात है, गला गड़बड़ कर रहा। जिस प्रकार अंशी वृक्ष के बीज अंकुर और वृक्षत्व रूप तीन अंश व्यय उत्पाद और द्रव्य रूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अंशी द्रव्य के नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और अवस्थित रहने वाला भाव, ये तीनों अंश व्यय उत्पाद और द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही दिखाई देते हैं। किंतु यदि भंग उत्पाद और द्रव्य को द्रव्य का ही माना जाए तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा। अभी सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा ये हमारी समझ में आना चाहिए। वो जो भी आपत्ति खड़ी कर रहे हैं ना कारण है कि जैसे द्रव्य की स्थिति है वैसी यदि हम उत्पाद व्यय और द्रव्य की माने तो क्या हो जाएगा, सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा। पहला दोष क्यों कि जब हम व्यय मानेंगे द्रव्य का तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, व्यय मानेंगे द्रव्य का लेगा ना तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए ये हो गया ना तो क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। कहते वो एक फिर पहले तो कौन सा था उत्पाद, फिर कहते व्यय, तो व्यय साथ सब शून्य हो जाएंगे, तो सबका व्यय हो जाएगा एक साथ। ये जो समय साल में है ना क्षण भंग कलश है कुछ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बिल्कुल इसी भाव के हैं, क्षण भंग का सात आठ कलश हैं, आठ कलश हैं, हाँ हाँ सठन भंग के प्रसंग से निज नाश करते अज्ञानी जन। तो वो ये कह रहे ना कि अपना नाश क्या करेंगे, उनका नाश मान लेंगे, वो क्षण भंग में अपना एकत्व तो करेंगे। है पड़ा बोलो जरा।
उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के प्रसंग निज का नाश करते अज्ञजन। चैतन्य मैंने जे आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे नित स्याद वादी वेग्य जन।
आठ छंद है जी, आठ एकांतों का निषेध करने वाले, उसी टाइप की विषय वस्तु है जी। हाँ, किंतु यदि भंग उत्पाद और द्रव्य ये तीन है, अभी ऊपर क्या कहा है पर्याय के हैं, अब कहते द्रव्य का ही माने हम तो के द्रव्य के ही होते हैं। कल मैंने कहा था कि द्रव्य का ऐसा मानते हैं, मैं खुद ही कहता हूं पर्याय तो ये जो पलटी ना उसे पलटने का नाम पर्याय है, तो पर्याय क्या पलटी, पलटा तो द्रव्य है, पलटी तो किताब है, ऐसा बोलते हैं ना समझे। तो वो यहां दूसरा उसके विरुद्ध प्रकरण है, वो कह रहे हैं कि यदि पर्याय का व्यय होता है और द्रव्य का ही व्यय माना जाए तो फिर खत्म हो जाएगा काम। माना जाए द्रव्य का ही माना जाए तो सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा, मैं तेरी मान्यता में कोई भी चीज नहीं बचेगी, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए, वो तो द्रव्य का उत्पाद माना जाएंगे जाएगा तो ये पोजीशन होगी। अब द्रव्य का भंग माना जाएगा तो क्षण भंग से लक्षित समस्त द्रव्य, क्या कह रहे हैं कि वो द्रव्य का क्षण माना जाएगा व्यय, तो क्षण भंग क्षण में भंग हो जाना ये हुआ लक्षण और उससे लक्षित हो गया द्रव्य। द्रव्य की पहचान क्या हो गई कि क्षण में नष्ट होना, तो कहते हैं समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाने से द्रव्य शून्यता आ जाएगी। एक ही द्रव्य नष्ट थोड़ी होगा, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव तो सत्य का स्वरूप है और सत्य तो सारे द्रव्यों में एक ही सत्य महासत्ता रूप, अथवा सत्य का उच्छेद हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो समय समय पर होने वाले उत्पाद के द्वारा चिन्हित द्रव्यों को, माने बार बार लिखा ना चिन्ह, माने ये लक्षण माना जाएगा तो उसका चिन्ह हो गया ना, ये इससे हम पहचान रहे उसे, है ना। तो द्रव्यों को प्रत्येक को अनंतता आ जाएगी, प्रत्येक द्रव्य अनंत हो जाएगा। द्रव्य स्वभाव से तो अनंत है ही ना, लेकिन वो पर्याय से भी अनंत हो जाएगा। यदि द्रव्य का ही द्रव्यत्व माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों का अभाव के कारण द्रव्य का अभाव हो जाएगा अथवा क्षणिकपना होगा। इसलिए यही ठीक है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्याय के आश्रय से हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रय हैं, इसलिए वे सब द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं। ये निष्कर्ष की लाइन है। विद्यार्थियों को तो पूरे तर्क और वो सब बात समझ में आने चाहिए और याद भी होना चाहिए। बाकी के जो मोक्षु भाई हैं उनको यदि इतनी समझ में आ जाए कि उत्पाद व द्रव्य पर्यायों के होते हैं, द्रव्य के नहीं। अब वे द्रव्य के क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पर्याय द्रव्य की हैं। जैसे अपन कहेंगे देखो हम ये आपको नहीं देंगे, हम आपके बेटे को देंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि भाई मैं हम आपको नहीं देंगे लेकिन ये बच्चा है ना इसके हम नाम पर ये अपना ये मकान करते हैं, हम ये देंगे इसको। तो वो कहता है ठीक है बच्चे को दे, हमें दो, हुआ तो हमारे ही पास आया ना। यही कहता है ना कि तूने ऐसा देने से क्या तुमको ये बात है, हमको कोई ऐतराज नहीं है, और वो ये भी कहता था कि नहीं साहब ये बात आपकी अच्छी नहीं है, क्या अगर हमें दोगे ना तो भी बच्चे के पास तो जाना है, उसी के पास तो पहुंचेगा। क्या नहीं साहब हम तो बच्चे को ही देना चाहते हैं, क्यों तुम गड़बड़ नहीं कर सकते उसमें, जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा तभी उसको वो प्राप्त होगा, वो कुछ कर सकते तुम चाहे बेच के खा जाओ कुछ भी कर लो अपना पुराना कर्जा चुका दो, ये हम ये नहीं चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि जब वो हो परिपूर्ण अब इसके लायक तो उसको पैसा वो मिले और उसके अधिकार में हो। कि साहब ये खाता बच्चे का है तो उसे ऑपरेट करने का अधिकार कैसे है, क्या नहीं आपको नहीं है, आपको संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हमको क्या फर्क पड़ता है, उत्पाद वे द्रव्य पर्यायों की है और वे पर्याय द्रव्य की हैं, तुम बेटे को देते हो बेटा हमारा है तो हमारा हो गया, हमको कोई विकल्प नहीं है। यानी साहब आप उसे निकाल के बर्बाद नहीं कर सकते हो, बच्चे को ही मिलना चाहिए। अरे तुम ये चाहते हो तो हम भी तो यही चाहते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि सब साफ करके जाएं और बच्चा सड़क पे भिखारी बन के रह जाए, हम हमेशा थोड़ी चाहते हैं। वो किसी भी रूप में जाएगा, जाना उसके पास है, इसलिए वो कहते हैं कि इससे घबराओ मत कि हम कह रहे हैं कि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य के लक्ष्य नहीं होते हैं, पर्याय के लक्ष्य होते हैं, तो द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य नहीं रहेंगे क्योंकि पर्याय द्रव्य की हैं, इसलिए उसमें उत्पाद व द्रव्य भी रहेंगे। सबको मैंने पर्यायों को तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा ना, द्रव्य को धर्म माना है ना, कहाँ कहाँ कह रहे पढ़ो कौन सी लेन पढ़ो, यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाते ये नहीं ना,
यदि द्रव्य का ही
द्रव्यत्व माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य तो क्रमशः नहीं हो रहा है ना, वो तो हमेशा ही है ना, अभाव के कारण द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यत्व का तो अभाव नहीं हो ना, उसको द्रव्य का अभाव मानते हैं तो द्रव्य का अभाव हो गया ना उसमें, अथवा क्षणिक पना होगा, यदि उसको क्षणिक मानेंगे पर्याय के साथ जोड़ेंगे तो द्रव्य क्षणिक हो जाएंगे सब द्रव्य, और या पर्याय भी ध्रुव हो जाएंगे। सीधी सच्ची बात तो इतनी है कि द्रव्य और पर्याय एक क्षणिक है और एक ध्रुव है। अब यदि हम दोनों को सर्वथा एक मान लेते हैं तो या तो द्रव्य को क्षणिक होना पड़ेगा या पर्याय भी ध्रुव हो जाएगी, ये है। इसलिए मतलब अपने द्रव्य उत्पाद व ध्रुव पर्याय की अपेक्षा से माना, और पर्याय द्रव्य में है, माने पर्यायों के अभेद को ही द्रव्य कहते हैं ना, अपने परिभाषा भी है ना कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों और पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। गुण जो ज्ञान गुण है वो जानने का काम करता है, तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो उसकी पर्याय हैं वे उस गुण के अतिरिक्त और क्या है, और उन पर्यायों के अतिरिक्त वो गुण और क्या है, है ना, तो एक ही बात हो जाएगी। तत्व दीपिका प्रदीपिका टीका के भाव को पंडित हेमराज जी द्वारा भावार्थ के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ये पंडित हेमराज जी कहां से आ गए, हमेशा तो अपन समय सार पढ़ते थे ना, तो पंडित राजमल जी आते थे, पंडित जी जयचंद जी छावड़ा आते थे, तो ये आप समझ लो कि अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है तत्व प्रदीपिका उसका जो हिन्दी अनुवाद है वो पांडे हेमराज जी ने किया है। ये पांडे शब्द जो है वो सिर्फ पंडित के लिए ही प्रयोग होता था, माने हम ऐसा नहीं समझे पांडे कोई अलग होते होंगे, और हिंदुओं में भी होते थे, हम ब्राह्मणों में हमारे साथ दो तीन अध्यापक थे तो वे पांडे कहलाते थे, पांडे माने पंडित जी, क्या कहां पढ़ रहे थे अपन, पांडे पंडित हेमराज जी लिखा है, पंडित पांडे हेमराज जी भी बोलते हैं इनको टीकाकार के लिए, इसलिए पंडित हेमराज जी लिखा है। तो जैसे जे पांडे राजमल जी है ना, कलष्टी का काल, ऐसे ये पांडे जी थे। बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये वृक्ष के अंश हैं। बीज भी वृक्ष का अंश है, अंकुर भी वृक्ष का अंश है, और वृक्षत्व, इन दोनों में रहने वाला जो वृक्षत्व है वो भी वृक्ष का अंश है। अभी आगे तो वो बीज अंकुर ही तक ले गए ना, अभी तो शाखाएं तना वहां तक जाएगा वृक्षत्व तो, लेकिन इनको तो यहां दो ही पकड़ने थे ना, एक का व्यय और एक का उत्पाद। तो बीज के बाद तो उत्पाद अंकुर का ही होता है, डालियों का थोड़ी हो जाता है ना। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य, तीनों एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार नाश बीज के आश्रित है, उत्पाद अंकुर के आश्रित है और द्रव्य वृक्षत्व के आश्रित है। नाश, उत्पाद और द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, तथा बीज, अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक वृक्ष ही है। इनका समुदाय वृक्ष है और इनकी अंदर का जो भेद है वो भी हमारे ख्याल में आए, ये इस बात को इनने यहां स्पष्ट कर दिया। एक ही बात को तीन बार दोहराया है। देखो, बीज पहले तो कहा बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये वृक्ष के अंश हैं। अब इसी को फिर कहा बीज का नाश और अंकुर का नाश, उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य, ये तीनों एक साथ ही होते हैं। उन्होंने उत्पाद व ध्रुव तीनों एक साथ हो गए ना, तो वहां यहां बीज का नाश हो रहा है, अंकुर का उत्पाद हो रहा है और वृक्षत्व बीज में भी विद्यमान है और इसमें भी विद्यमान रहेगा। नाश, उत्पाद और द्रव्य बीज, अंकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीज, अंकुर और वृक्ष से नाश, उत्पाद और द्रव्य अलग हों, वे इन्हीं के तो हैं। बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य, वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, तथा बीज, अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक वृक्ष ही है। अब जैसे एक वृक्ष ही है घटित किया ना, तो नीचे करें एक द्रव्य ही है ऐसा घटित करेंगे। इसी प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और द्रव्य भाव, ये सब द्रव्य के अंश हैं। नष्ट होते हुए भाव का नाश, उत्पन्न होते हुए भाव का उत्पाद और स्थायी भाव का द्रव्य एक साथ हैं। इस प्रकार नाश नष्ट होते हुए भाव के आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुए भाव के आश्रित है और द्रव्य स्थायी भाव के आश्रित है। मैंने बिल्कुल जैसा वृक्ष पर अंकुर पर घटित किया था ना, वैसा यहां द्रव्य पर घटित किया है। नाश, उत्पाद और द्रव्य उन भावों से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है और वे भाव भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक द्रव्य ही है। एक गाथा की में भी यही शब्दों का प्रयोग है कि ये सब एक द्रव्य रूप ही है। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व का एकत्व, आचार्य अमृतचंद ने उक्त टीका में बीज, अंकुर और वृक्षत्व के उदाहरण से समझाया है, किंतु आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में स्वसंवेदन ज्ञान के उत्पाद, अज्ञान पर्याय के व्यय और दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की स्थिति पर घटित करके समझाते हैं और अंत में यह कहते हैं कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय से ये सभी द्रव्य हैं। इस प्रकार ये नामोल्लेख पूर्वक नय का उल्लेख भी कर देते हैं। अन्वय द्रव्यार्थिक नय जो दस प्रकार के द्रव्यार्थिक नय है ना, उसमें है शायद सातवां है ना, क्योंकि तीन सापेक्ष तीन निरपेक्ष उत्पाद व्यय सापेक्ष कर्मोत्पादी सापेक्ष और भेद कल्पना सापेक्ष और उत्पाद व्यय सापेक्ष ये तीन अशुद्ध और तीन शुद्ध छह और फिर सातवां अन्वय द्रव्यादक और आत्मा पर द्रव्यादि ग्राहक और एक द्रव्यादि ग्राहक और फिर परम भाव ग्राही दिव्यार्थक। तो अन्वय दिव्यार्थक क्या है? तो अन्वय दिव्यार्थक के जो उस वस्तु में निरंतरता को बताए है इसको बताए वो अन्वय है। तो वो ये कहते हैं कि ये यहां अन्वय द्रव्यार्थक की बात कर रहे हैं। द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है। तो ऐसा अन्वय, ये अन्वय इनमें मौजूद है, इसलिए ये अन्वय द्रव्यार्थक न्याय का विषय है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य पर्यायों के ही होते हैं, द्रव्य के नहीं, क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत ध्रुव पदार्थ है, उसका उत्पाद और नाश कैसे संभव है। हां यह बात अवश्य है कि उत्पाद आदि की आधारभूत पर्याय द्रव्य की ही हैं, इस कारण वे सब द्रव्य ही हैं। मन हम द्रव्य का उत्पाद व्यय नाश कह सकते हैं, किस अपेक्षा से कि उनकी पर्यायों के उत्पाद व्यय ध्रुव होते हैं और वे पर्याय द्रव्य की ही हैं, यानी उनका अस्तित्व और द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है माने उनके प्रदेश अलग अलग नहीं है। जब अस्तित्व को अलग अलग कहते हैं तो वहां प्रदेश भेद होता है, मतलब और जहां अस्तित्व को एक ही कहते हैं तो वहां प्रदेश भेद नहीं होता है, ये मुख्य बात है। भेद विज्ञान की दृष्टि से समय सार में, खासकर संवर अधिकार में 181-183 गाथाओं में राग अपने राग से और आत्मा के प्रदेश भेद का कथन है। अब राग से आत्मा के प्रदेश भेद तो हो ही नहीं सकते हैं इस नियम से, जो नियम अपन इस प्रवचन सार में पढ़ रहे हैं यहां, लेकिन उन्हें भेद विज्ञान कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि राग का नाश होना है और आत्मा को कायम रखना है। यदि किसी आदमी को ये भरोसा हो जाए कि राग के नाश होने से मेरा आत्मा भी नाश हो जाएगा, तो फिर कोई आदमी ना राग को नाश करने की नहीं सोचेगा। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि राग नष्ट हो जाएगा और आत्मा सुरक्षित रहेगा, तभी वो राग को नाश करने का सोचेगा। इसलिए वो कहते राग से यदि रंज मात्र भी अपनापन बना रहा तो फिर हम राग को नाश करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें कैंसर हो जाता है, अब हम जानते हैं कि कैंसर अलग चीज है और हम नहीं, हमारा शरीर अलग है। अब कैंसर निकल जाएगा और ये शरीर कायम रहेगा, इसको हम बोलते हैं हम कायम रहेंगे। यदि उसे पता लगे कि हम कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो जिसमें कैंसर है वो शरीर भी साफ हो जाएगा। तो कोई आदमी किसी भी कीमत पर ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं होगा। उसे ये भरोसा होना ही चाहिए कि ये निकल जाने वाली चीज है और ये रहने वाली चीज है, इसके निकलने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए राग में रंच मात्र भी उपादेयपना नहीं रह जाए, अपनापन नहीं रह जाए। इसलिए उन्होंने अध्यात्म के जोर में उनके प्रदेश भेद की बात करी है, और जो बहुत विवाद का विषय मुमुक्षुओं में बनता रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि वो हम अपेक्षा समझ लें कि उन्हें यहां अपेक्षा करें, हम ऐसा ही मान लेंगे तो ये उन्हीं का प्रवचन सार है, उन्हीं की टीका है अमृतचंद की, और इसी में ये बात कही है। तो वस्तु स्वरूप के निकट तो यही है ना, वो तो राग तो उसे आत्मा का ही पर्याय है और अपनी पर्याय से अपने में अतत भाव लगता है, अभाव नहीं लगता है ना। सोमी गाथा में उत्पाद व्यय बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद बिना नहीं होता और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व उत्पाद व्यय ध्रुवत्व के बिना नहीं होते। इस प्रकार इनमें वस्तु भेद नहीं है यह बताया है। फिर 101वीं गाथा में उत्पाद व्यय ध्रुव पर्यायों में होते हैं और पर्यायें द्रव्य में होती हैं, अतः वे सभी द्रव्य हैं, द्रव्यांतर नहीं, यह बताया है। और अब इस 102वीं गाथा में यह बताया जा रहा है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में हैं, इनमें काल भेद नहीं है, क्योंकि भाषा ऐसी आती है ना, पूर्व उत्तर, तो हमको पहले और बाद में वही भ्रम हो जाता है, है? वो कहते हैं पूर्व पर्याय का व्यय, तो वो कहते वो तो फिर एक समय पहले ही होगा ना, और फिर उत्तर दूसरे समय में वो पर्याय आएगी, है? तो वो पहले समय में तो उस पर्याय का अस्तित्व है, समझ रहे हैं ना? देखो जो एक समय का उत्पाद होगा वो अस्तित्व ही है, व्यय होगा वो भी अस्तित्व ही है। तो वो कहते हैं उत्पाद व्यय एक ही समय में दोनों हम घटित होते हुए हमारे दिमाग में आने चाहिए। अब वो कहते पर्याय तो उत्पाद तो नई पर्याय का है जो नई, और व्यय जो है वो पूर्व पर्याय का है, वो पूर्व पर्याय की अपेक्षा व्यय है, लेकिन वो व्यय नाम का धर्म इसी समय है जिस समय उत्पाद नाम का धर्म है। ऐसा अपन को उधर भी चक्कर पड़ता है कि 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है, तो एक समय पहले जितने भी समय पहले शास्त्र में लिखा हो, पहले वितरागता होती है और फिर बाद में उसके बाद में केवल ज्ञान होता है, जैसा कि तत्वा सूत्र के अंतिम सूत्र से सिद्ध होता है, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना क्षयाच ज्ञान। अभी 10वें गुणस्थान में राग राग का अभाव हो जाता है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है ना, तो 12वें में गया तो वहां तो क्षीण मोह तो हो गया ना, 12वां गुणस्थान का नाम क्षीण मोह है। अब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है, तो बीत रागता तो 12वें गुणस्थान के अंत समय में हो गई ना। अब चाहे ऐसा कहो कि 12वें गुणस्थान के अंत समय में हो गई और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान के शुरू में हुआ, अब एक ही गुण की पर्याय हो तो फिर हम कहेंगे अज्ञान का नाश और केवल ज्ञान का उत्पाद, मतलब क्षोभसम ज्ञान का नाश और केवल ज्ञान का उत्पाद, वो एक ही समय में घटित हुएगा। अब चूंकि ये दो गुण अलग अलग है ना, ये चारित्र गुण में है, तो उसमें आता है अंत में और उपांत में, ऐसा आता है ना ये शब्द के, ज्ञानावरणी का नाश होता है अंत में और मोहिनी का नाश होता है उपांत में, तो अंत में और उपांत में वही पहले ही समय उपांत है, तो उसके बाद का समय अंत है, एक समय का फर्क पड़ता है वीतरागता और सर्वज्ञता में, है ना। लेकिन वीतरागता होना एक समय पहले अत्यंत आवश्यक है, तब केवल ज्ञान होता है। यदि केवल ज्ञान वीतरागता हुए के बिना मान्य हो जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष तो उनके अंदर रहा और केवल ज्ञान हो गया तो सब जानने में आ गया। अभी तो हम बहुत कुछ राग द्वेष से सिर्फ इसलिए बचे रहते हैं कि हमें पता नहीं है। जो जो लोग हमारे विरुद्ध परिणति करते हैं, मान लो कोई भी घटना घटी तो सारे देश में रिएक्शन होता है, कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, होते ना, तो जो पसंद करते हैं उनसे हमें राग होता है, जो नापसंद करते हैं उनसे हमें द्वेष होता है ना। अब हमें पता ही नहीं चले, हमें उसके पता ही नहीं चलेगा किसने विरोध किया और किसने पक्ष में किया, ख्याल में ही ना, पता ही नहीं चले तो हमें राग द्वेष नहीं होता। तो ऐसे तो लोग की इस बात से सिद्ध होता है कि वीतरागी नहीं होंगे, और राग द्वेष यदि होगा तो वो केवल ज्ञान होने के बाद अनंत सुख नहीं होगा, अनंत दुख हो जाएगा, क्योंकि उसको अनंत भव के पुराने के माँ बाप भाई बहन पत्नी बाल बच्चे सब दिख जाएंगे केवल ज्ञान में। तो अभी तो ये सामने वाला एक बेटे से राग होता है, एक वो होता है द्वेष होता है, जिससे भी होता है, लेकिन उसमें तो अनंत दिखे तो अनंत अनंत गुणा राग हो जाएगा ना। तो वीतरागता एक समय पहले और केवल ज्ञान एक समय बाद में होता है, ये वीतरागता अंतर्मुहूर्त पहले कितने समय होते उसमें, मैंने किसी ने ऐसा वो कहा था मेरे से हाँ, तो मतलब वो पूरा बारहवां गुणस्थान है वो वीतरागता का है, बारहवां क्या ग्यारहवां भी है ना, वो तो बाद में ग्यारहवां गुणस्थान भी वो ये दोनों पूरे वीतरागता के हैं, तो उसको ही हम उपांत कहेंगे, क्योंकि उसके पहले फिर उन उन उसके बाद में जो केवल ज्ञान हो रहा है और ये वीतरागता हुई है तो इन दोनों के बीच में कोई समय नहीं है, क्या समझ गया ना, इसलिए हम उसे उपांत कह देते हैं। क्या चार एक समय का भी हो सकता है, अंतर्मूर्त का भी हो सकता है, और अंतर्मूर्त भी कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े अपन बोलते हैं ना, सातवां गुणस्थान अंतर्मूर्त का, आठवां अंतर्मूर्त का, नौवां अंतर्मूर्त का, दसवां अंतर्मूर्त का, क्यों, और सब मिलाकर के भी अंतर्मूर्त के, तो इस तरह से वो व्यवस्थाएं हैं। अभी अपन 102 गाथा पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो।
संवेदं खलु दग्धं संभवठेदिनासे सन्निदट्ठेहिं एकं मिचेव समये समहादग्धं पुतत्तिदयं उत्पादव्यथिति द्रवे मे संवेत हो प्रत्येक पल, बस इसलिए तो कहा है इन तीन में है द्रव्य सब।
एक ही द्रव्य द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय और स्थिति नाम के तीन अर्थों के साथ एक में एक ही है, इसलिए ये तीनों द्रव्य ही हैं। माने उत्पाद भी द्रव्य, व्यय भी द्रव्य और द्रव्य भी द्रव्य, तीनों का एक समय में होना अनिवार्य है, तो तीनों द्रव्य ऐसा भी कह सकते हैं, और तीनों को द्रव्य कहें तो कहते हैं वो द्रव्य का अंश भी द्रव्य है, जैसा वो प्रश्न किया वो समुद्र है असमुद्र है, हैं वो प्रश्न किया ना क्या में राज उसमें श्लोक वार्तिक में प्रमाणों ने प्रमाण नये जो है वो प्रमाण का अंश है क्या है, प्रमाण प्रमाण है कि अप्रमाण है, तो कहते ना प्रमाण है ना अप्रमाण है, प्रमाण का एक देश है, है? उत्पाद व्यय स्थिति द्रव्य में समवेत हो प्रत्येक पल। अब फिर लगाएंगे तो इस पल में तो बहुत समय होते हैं, वो पल नहीं लेना, प्रत्येक समय समय के अर्थ में ये पल है, ये पल का अर्थ एक समय ही लेना, बस इसलिए तो कहा है इन तीन में है द्रव्य सब। वस्तु का जो गुरुदेव इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय के लिए बहुत कहते थे, और जब क्रमबद्ध पर्याय की किताब मैंने सबसे पहले एडिशन में गुरुदेव के पास पहुंची तो उन्होंने देखा जन्म क्षण तो मुझे से पंडित जी और तो सब आ गया है लेकिन जन्म क्षण छूट गया है, ये कहा बड़ौदा में कि जन्म क्षण छूट गया है, मैंने कहा महाराज वो तो डाल देंगे, तो एक लेन डालनी है कि वो ये कहते हैं कि हर एक द्रव्य का यानी उस पर्याय का जन्म क्षण नक्की है, ऐसा वो बात कहते हैं कि ऐसा प्रवचन सार में लिखा है और इसे क्रमबद्ध पर्याय के पक्ष में बहुत गहराई से व्यक्त करते थे। यहां वो कल था ना तुम लोग गए थे तेनसुदास जी का व्याख्यान माला थी, वहां बड़े बड़े विद्वान आए थे, तो अपने विद्यार्थियों की चर्चा हुई ना, शांति जी ने सुना, आपको सुनाया क्या नहीं सुनाया? तो वे भगवान क्या बोलो बोलो क्या होता है, वो जानते हैं ना लेकिन भविष्य को नहीं जानते, कि दो शब्द थे ना क्या क्या था, अनंत को जानते हैं लेकिन सबको नहीं जानते। बोलो अब अपनी यह सभा मोक्षों की सभा है जो निरंतर ये सुनती है, अभी इनको भी इतने समझ में आता है कि अनंत को जानते हैं और सबको नहीं जानते हैं, तो उनकी सब कितना होता है, वो अनंत ही तो होता है ना सब, तो वो अनंत ये अनंत अलग अलग है क्या? तो जब भी अनंत को जान लिया तो सभी को जान लिया ना, तो और कौन ऐसा रहा जो बिना जाने रह गया? तो कहते कि नहीं भूत की जानते हैं भविष्य की नहीं जानते। इन, इन बच्चों से बहुत बहस करी, कहीं साहब शास्त्र में बताओ शास्त्र में बताओ, इन्होंने सर्वा सिद्धि निकाल के बताई, ये तो हिंदी में है हिंदी में है हिंदी में, इन्होंने संस्कृत में निकाल के बताया वहीं, मतलब इतने बड़े बड़े विद्वान भी इतनी बात जो अपन दिन रात यहां पढ़ते हैं ना, स्वाध्यायी भाई बहन वे भी उनके गले उतर गई, इसमें भगवान के केवल ज्ञान में ही शंका करने लग गए। सिर्फ हम तुम्हारी यहां क्रमबद्ध पर्याय ना मान लिया, ये क्रमबद्ध पर्याय हमारे बाप की थोड़ी है, वो हमारी कब से हो गई, तुम्हें ऐसा लगता है यदि क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाएगी तो हमारी जीत हो जाएगी? उस क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होगी तो हर उस आदमी की जीत होगी जो क्रमबद्ध पर्याय मानता है। तुम्हें कौन मना करता है कि तुम मानो कि नहीं मानो? मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसमें कोई काल का नक्की थोड़ी है कि जो पहले मान लेगा वो बड़ा विद्वान, जो बाद में मानेगा वो छोटा विद्वान, ऐसा भेद तो है ही नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री को पहले समझ में आई मान लीजिए और अपन को बाद में आई, तो वे इसलिए बड़े हैं अपने से? अरे भाई जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे पहले आएगी यही जिसकी उम्र जब पैदा ही नहीं हुए थे तो तब उनके ज्ञान में आ गई, और जब आप पैदा हुए आप समझने लायक हुए तो आपके ज्ञान में आ गई, तो दोनों का लाभ तो दोनों को एक से ही मिलेगा ना। यदि वो वस्तु का स्वरूप है, मेरे कहने का मतलब यह है, तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमको बहुत ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए ना। ऐसा भी फीलिंग होता है, ये विद्यार्थी बताते थे कि उनको अंदर से तो जम गई कि बात सच्ची है, तर्क के आधार पर है और आगम में लिखी हुई क्लियर है, लेकिन अभी वो स्वीकार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मेरे पिताजी भी उन्होंने अपने बुढ़ापे में अंतिम समय में काफी अच्छा अभ्यास किया था, लेकिन शुरू से तो नहीं समझते थे ज्यादा। तो हम अशोकनगर में थे और रोजीना झगड़ा होता था और हमारे गुरुजी वहां से आए थे मुरैना से, तो वे अपने विरोध में ही बोलते थे, समझे ना, तो वहां पिताजी सुनते थे और हमसे झगड़ा होता था उनका, मतलब विनय मर्यादा हमने कभी भंग नहीं की लेकिन सहमति तो नहीं होती थी ना इन्हीं विषयों पर। तो समाज मतलब ज्यादा वैसा ही समाज है ना, अपने मुमुक्ष तो बहुत कम है, तो उनके साथ ज्यादा समाज दिखाई देती थी, तो ऐसा लगता था कि झगड़ा पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पिताजी मेरे से कहते थे बेटा तुम्हारे गुरुजी हैं इतने बड़े विद्वान हैं, वो तो तुम उनकी बात नहीं मान रहे, फिर कभी कभी ये लगता है इतना ज्यादा झगड़ा होगा तो यहां भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है नौकरी छूट जाएगी, कोई गवर्नमेंट की तो थी नहीं, यहां से जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चले जाएंगे, जाना पड़ेगा तुम तो। ऐसे कहां कहां से जाओगे, जहां जहां जाओगे जहां जहां ये होगा। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है ये सही है क्या नहीं, हमें तो ये बताओ। आप तो रोजाना सुनते हो, हमारे लिए समझते हो, बोले बात तो सच्ची है, तो फिर इसको छोड़ दें, बिल्कुल हो जाएगा, नौकरी छोड़ना पड़ेगी, ये हो जाएगा, पिटाई भी कर सकते हैं, जो कुछ कर सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें तो आप बताओ कि आपके गुरु जी हैं वो कैसे गलत कह सकते हैं। हमने कहा आप बताओ कि गलत है कि नहीं है, नहीं, आप समझ रहे ना, लेकिन गुरु जी हैं इसलिए गलत नहीं कह सकते, क्या चाह रहे बोला। यानी एक बात मैं फिर कहता हूं, मैं देव सास गुरु और अपने विद्या गुरु भी अध्यात्म के, उन सब का अत्यंत सम्मान श्रद्धापूर्वक हमें स्वीकृति होनी चाहिए, ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूं, इसी की प्रेरणा आप लोगों को देता भी हूं, ख्याल में आई ना। लेकिन हम तत्व ज्ञान में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, यदि वो बात स्पष्ट है उनकी बात गलत है तो हम उनकी विनय मर्यादा रख करके भी हम उनकी ये गलत हैं, हम उस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसमें हम वो कोई वो नहीं समझते कि हमने गलत काम किया। मैं पिताजी से कहता था कि हम उसकी जो सजा मिलेगी वो भोगने के लिए तैयार हैं, भोगेंगे, लेकिन तुम इतनी तो कहो कि बात तुम्हें दो में से कौन सच्ची लगती है। यदि ये बात गलत है तो हमें आप समझाओ, वे गुरु जी समझाएं, हम गारंटी से मान लेंगे, लेकिन दोना पट्टी से काम नहीं चलेगा। इसकी दृढ़ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज का बहुमत आज भी उसी प्रकार का है, साधारण समाज का बहुमत ज्यादा उसी प्रकार का है। आप यहां वज्र के किले में बैठे हैं, इसलिए आपको यहां कुछ भी नहीं होता, खूब गोष्ठियां करते हैं और सब अच्छा जम के बोलते हैं, समझ गया सब बात है ना, लेकिन बाहर जाकर के ऐसा नहीं होगा आपको, वो मैदान होगा, समझ में आई ना। और उस मैदान में आपको वस्तु के स्वरूप को से समझौता भी नहीं करना है, और हम किसी से लड़ना भी नहीं है, अपने को सुरक्षित भी रखना है, क्यों, और तत्व का प्रचार भी करना है, और ये इसके लिए हमको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और इन सब में से कुछ छोड़ना पड़े तो, आप समझिए ना, कुछ माने जो नुकसान जिसे अपन बोलते हैं, समाज छोड़ना पड़े, घर वालों को छोड़ना पड़े, गुरु जी को छोड़ना पड़े, मां बाप को छोड़ना पड़े, तो सब छोड़ देना। लेकिन ये यदि तुमको सही लगता है तो ये किसी कीमत पर छोड़ने लायक चीज नहीं है, नहीं तो क्या मतलब है हमारे पढ़ने का, और ये जनवाणी का क्या मतलब है, है? 5 साल तुम लोगों ने पढ़ा, यहां गहराई से पढ़ा, तो कोई किसी ने दबाव किया, तुम दबाव से पढ़े हो, किसी को के पास जाने से रोका है कि तुमको समझते वो तुम्हें समझा सकते हैं तो उनके पास जाओ, समझो, बहुत विनयपूर्वक समझो, मेरे कहने का मतलब कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और तुमने यदि बिल्कुल अपने स्वतंत्रता पूर्वक ये निर्णय किया है तो फिर ये दूसरों का नहीं है, फिर आप किसी के पक्ष में नहीं हैं, है? आप अपने पक्ष में हैं। तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम अपने ही विपक्ष में हो जाएं दूसरे के पक्ष में होने के लिए, वस्तु के स्वरूप के विपक्ष में हो जाएं, ये कैसे संभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये सामने वाले को सब स्पष्ट नजर आ रहा है, फिर भी न मालूम क्या कारण है कि जिस कारण से वाणी में स्वीकृति नहीं आ रही है, है? बहुत लोग ऐसे, पहले ऐसा नहीं था, हमारे सामने देखते देखते आने का लोग इस मामले में इतने गंभीर थे, जो विद्वान थे ना बड़े बड़े, जैसे जगन मोहन लाल जी थे, कैलाश चंद जी थे, जो बड़े बड़े विद्वान थे, तो वे जो सत्व उनके ख्याल में आता था वे स्वीकार करते थे। क्या इससे बड़ा प्रमाण मैं और क्या दे सकता हूं कि मैंने 200 लोगों के पास क्रमबद्ध पर्याय की किताब भेजी थी, एक दफे नहीं चार दफे, उसमें आपने देखा होगा पहले एक 16 पेज की थी तो वो भेजी, फिर उससे मांगा कि आप ये बताइए इसमें कोई सुधार की अपेक्षा हो तो हम सुधार सकते हैं, फिर द्वारा लिखी तो वो 25 पेज की हो गई थी तो वो भेजी, फिर तिवारा नली तो 63 पेज की हो गई थी फिर वो भेजी, फिर वे सारे प्रश्न आए उनके उत्तर लिखे तो कितने 125-150 पेज जो भी हैं वो उतनी हो गई, इतने बार भेजा और उसमें कम से कम 50 विद्वानों की सम्मतियां लिखी हैं ना, वो सारे विद्वान लगभग ऐसे हैं कि जो उस वक्त गुरुदेव श्री के विरोध में जो खड़े होते थे उनके साथ खड़े होते थे। कैलाश जी आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा, यहां खानिया तत्व चर्चा हुई थी तो उसमें वो उस तरफ खड़े थे, क्या फूलचंद जी इधर थे और उधर पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य और बड़े बड़े और विद्वान उस पक्ष में थे शांति जी, लेकिन उन सब ने सम्मतियां भेजी और ये क्या गए ये बात सत्य है। अब वो क्षमता आज नहीं है, क्या अब भले ही फिर बाद में कोई सोनगढ़ वालों के ग्रुप के साथ हो गए हों कि सोनगढ़ वालों ने स्वीकार कर लिया हो, ऐसा नहीं है, तत्व में ये नहीं होता है। शायद मैंने एक दिन आपको सुनाया था, वो भी बहुत मार्मिक बात है, एक बहुत बड़े विद्वान थे यहीं पर ब्यावर में रहते थे पंडित हीरालाल जी शास्त्री, जिन्होंने फूलचंद जी के साथ जय धवला पर धवल पे काम किया है, मैंने सिद्धांत शास्त्री और जो काम फूलचंद जी ने किया है डॉक्टर हीरालाल जी ने किया है और हीरालाल जी के साथ में ये एन उपाध्याय, इन लोगों ने जो काम किए हैं ना उनके साथ के विद्वान थे, वे वहां आए थे जब दादर के मंदिर का पंचकल्याणक था और पूज गुरुदेव श्री की 75वीं जन्म जयंती थी तो सारे विद्वान इकट्ठे हुए थे और जो लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था, तभी की बात है, तो संस्कृत में बहुत बढ़िया कविता लिखी थी उनने, संस्कृत के विद्वान थे बहुत अच्छे, लेकिन उस वक्त फूलचंद जी और मैं गुरुदेव के कुंभी डांस में थे तो वो ये समझते थे कि एक कविता हम इन्हें दिखा लें और इन्हें पसंद आ जाए तो ये गुरुदेव तक हमारी पहुंच आसानी से जल्दी हो जाएगी, तो उनने वो कविता मुझे दिखाई तो उस कविता में गुरुदेव को तीर्थंकर लिखा था, तो मैंने अत्यंत विनयपूर्वक पंडित जी से कहा, मैंने किसी विद्वान के मर्यादा को भंग कभी नहीं किया कि पंडित जी अपने लोग तो आलोचना करते हैं कि ये लोग ने तीर्थंकर तीर्थंकर कहते हैं और आपने ही लिख दिया इसमें है? इसे क्या फायदा, नहीं नहीं ठीक है ठीक ऐसा ऐसा उनने बहुत बड़ा काम किया है ऐसे, मैंने कहा नहीं तो और बढ़िया से बढ़िया शब्द हो सकते हैं जिससे उनकी बहुत प्रशंसा होने किया है जो आपको अंदर से है तो वो ऐसा हो सकता है, तो बोले तो आप ठीक कर दो, नहीं मैं क्या बात करता हूं मैं नहीं कर सकता, मैं संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है और मैं संस्कृत का कवि भी नहीं हूं, मैंने कुछ लिखा भी नहीं है संस्कृत में, खासकर न गद्य में न पद्य में मेरा लिखा हुआ कुछ है ही नहीं, आते तुमने देखा है फिर भी वो पीछे पड़े तो मैंने वो तीर्थंकर शब्द हटा के और बहुत अच्छा कोई शब्द सेट कर दिया जो कविता किसी कीमत कम होती ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब वे बोलने खड़े हुए तो उनने वो तीर्थंकर शब्द ही बोला, मेरे से जो करेक्शन करवाया था वो नहीं बोला। तो उस वक्त ऐसी विद्वानों की मतलब इतनी ऐसी वो थी कि मैंने उनसे कहा, पंडित जी ये क्या किया आपने, क्यों कि क्या भाई क्या था, क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। मैंने लोगों का ये बहुत बड़ा भ्रम था गुरुदेव के बारे में कि वह चापलूसी कर हमारा काम हो सकता है, जबकि कम से कम गुरुदेव के पास में ये बात बिल्कुल नहीं थी। यदि आप सच्ची रुचि वाले हैं और तत्व की पकड़ आपकी सच्ची है तो गारंटी से आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा, प्रेम मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा, और इसमें आपने काम किया तो कोई कमी नहीं आएगी, उससे और कोई अपेक्षा उन्हें नहीं थी। और यदि उनको ये पता चल गया कि आप किस तत्व की पकड़ नहीं है तो 100 सिर के हो जाना उनकी दृष्टि में नहीं चल सकते थे। ये कोई आदमी मानने को तैयार नहीं था। गुरुदेव ने भी सुना कि तीर्थंकर कह रहे, लेकिन वे कुछ कुछ खुश नहीं हुए उससे, समझे ना। वे उनको तीर्थंकर कह रहे थे तो गुरुदेव बहुत खुश हुए होंगे, ऐसा नहीं है क्या। मेरे कहने का मतलब है कि वस्तु के स्वरूप में कोई समझौता नहीं करना। तुमने यदि उपलब्ध कुछ किया है 5 साल में यहां, और यदि संस्था की कोई क्रेडिट है, यदि अपन सब लोगों की कोई बात है, तो उसमें यह सबसे बड़ी है कि तत्व ज्ञान सर्वोपरि है, हमारा आगम सर्वोपरि है। सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं, और आगम के रूप में भी हमें उपलब्ध हैं। जो आगम के रूप में हमें उपलब्ध हैं तो वो आगम है। और अपने यहां तो मैंने वो बोला था ना, मंगलाचरण बोलते हैं ना, मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा। तो उस दिन मैंने कहा था कि भाई मैं नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मेरे से इतनी लंबी देर तक बोलूं तो प्रचन नहीं हो गए, लेकिन तुम लोग बोला करे। तो दूसरे दिन मैंने सुना, एक विद्यार्थी प्रवचन कर रहा था ना, तो उसने पूरा मंगलाचरण बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रहा था क्या पूरा मंगलाचरण बोला, तो बहुत दिनों बाद मुझे वो सुनने को मिला था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमको ये बात बोलने की नहीं, फीलिंग करने की है कि ये बात हमारी नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान की बात है। ये शास्त्र हमारे लिए सर्वज्ञ भगवान की जगह है, सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं। और इसको मर्म बताने वाले जो है वो हमारे गुरु हैं, देवशास्त्र गुरु वाले। गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, वो देवशास्त्र गुरु वाले एक मिनट में खत्म करता हूं। एक होते हैं निरपेक्ष गुरु और एक होते हैं सापेक्ष गुरु। परमात्मा समझ में आया कि नहीं। एक तो ऐसे कि उनने हमारा क्या उपकार किया है, हमें क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है, इससे निर्णय नहीं होता कि वे हमारे गुरु हैं कि नहीं है, बल्कि वे देवशास्त्र गुरु हैं। छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूल रहे हैं तो उनने हमारा कुछ भी नहीं किया हो, उनसे हमारा रंज मात्र भी उपकार नहीं हुआ हो, कभी हमारी उपेक्षा भी हुई होगी, होने चाहिए। ये तो हमारी तुम्हारी भी अपेक्षा करेंगे तो वे गुरुपना खत्म हो जाता है, समझ गए ना। लेकिन वो हमारे निरपेक्ष गुरु हैं, हम उन्हें भी हम पढ़ाएंगे तो हम उनको मानेंगे, नहीं तो नहीं, मनाएंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। हम देवशास्त्र गुरु जैसे देव अरहंत भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, हम वैसा ही उनको अर्घ चढ़ाते हैं। वे हो गए हमारे निरपेक्ष गुरु। और अब वो जो ही तत्व ज्ञान, वो लौकिक पढ़ाई की बात नहीं करता मैं, जो लौकिक तत्व ज्ञान यदि हमको किसी धर्मात्मा से पढ़ने को जानने से मिलता है तो वो हमारा शिक्षा गुरु है, अध्यात्म विद्या का गुरु है, ख्याल में ना, वो हमारा वैसा गुरु है। तो हम तो वो अपनी बात को डंके की चोट रखें तो क्या दिक्कत है। ये वो विराग सागर ने हमको बुलाया था ना, हम गए थे तो वहां डंके की चोट, हमने बड़ी सभा में टीवी लग रहा था और सारे देश में लाइव डिले हो रहा था, और हमने बोला कि हम कान्हजी स्वामी के शिष्य हैं, ऐसा बोला डंके की चोट। उन्होंने हमें इस अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराया है। लोग एक अक्षर भी ये भी सीधी सीखते हैं तो उसको भी गुरु मानते हैं। यदि वो आदमी जिसने हमें ये भी सीधी सिखाई और यदि हम प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं और वो आता है तो हम खड़े होकर आदर से बुलाते हैं और जो काम वे कहते हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक हम करते हैं, बिना कहे करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो हम उन अध्यात्म विद्या के गुरु को हम क्यों नहीं करेंगे। हमें उनसे ये चीज मिली है लेकिन हम उन्हें देवसाज गुरु वाला गुरु नहीं मानते। और देवसाज गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर भीतरागी संत ही होते हैं, ये हम गंडंके की चोट मानते हैं और कहते हैं। हमसे तो कोई नाराज नहीं हुआ, मुमुक्षु भी खुश और बाकी के लोग भी खुश। क्यों कि साहब आपने बहुत बढ़िया बात कह दी, अपने गुरुदेव की लोग कहने की हिम्मत ही नहीं करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपने सच्ची बात कह दी कि उनको गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, ये कैसे गुरु हैं, और वो बात भी स्पष्ट कर दी। तो हाथ में रखे उन्होंने जैसे काय का डरना बखा। किसी से भी मिलने में हमें क्या तकलीफ है, लेकिन हम बशर्ते हमारी हम अपनी बात में मजबूत हों, दृढ़ हों, पक्के हों, हम ऐसे लुंज पुंज नहीं हों कि हमें डराया जा सके, हमें धमकाया जा सके। ये पक्की बात है कि मैंने ये कल्पना की है अपने विद्यार्थियों की, तो ये कल्पना की है कि वो वज्र के समान उसे डरा के धमका के कोई तत्व का उल्टी बात स्वीकार नहीं करा सकता, नहीं कराना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आपको क्या सफलता मिली और क्या नहीं मिली, क्या लेना देना है हमें, लेकिन आप अपने तत्व ज्ञान के प्रति पक्के हैं और आपने निर्णय किया है तो उसके अनुकूल रहना चाहिए, फिर हमें कहीं कोई भय नहीं है। काहे का भय, किसका भय बखना, हमें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है, फिर हमको भय काहे का हो। तो इस वस्तु के स्वरूप को हमें समझना चाहिए।
आनंदी शोध